Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Svetashvatara Upanishad ke Swadhyaya mein 11वां मंत्र होगा नहीं उसके भाष्य पर विचार बाकी है। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणैः क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणि तस्या विद्यानात्रितीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणिः तस्या विद्यानात्रितीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः भाष्य शुरू है ना। मूल मंत्र की व्याख्या कल किया गया। इस मंत्र पर सर्वज्ञ आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी के भाष्य है, तो भाष्य विचार करते हैं और भगवान शंकराचार्य जी इस मंत्र की किस तरह व्याख्या करते हैं वो हमको समझ में आएगा। ज्ञात्वेति, ज्ञात्वा देवम्, उस देव को जानकर, देव माने परमात्मा, ज्ञात्वा उस परमात्मा को जानकर, कैसे जानकर, अयम अहम अस्मि, ये जो ब्रह्म है यही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि है ना, अहम ब्रह्मास्मि, इसी तरह अयम अहम अस्मि, अयम देवा अहम अस्मि, इस बात को लेकर बहुत वैष्णवों को बड़ा आपत्ति हो जाता है। वो आपत्ति यह है कि वेदांति लोग खुद को परमात्मा सिद्ध करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ये आपत्ति है कि वो खुद को अपने आप को परमात्मा मान बैठते हैं, जबकि ये जीव बनने लायक भी नहीं है। जबकि इनका लक्षण देखो, इनका व्यवहार देखो, इनका आचरण देखो, इनके रहन सहन को देखो, इतने राग द्वेष से भरे हुए रहते हैं, खुद जीव बनने लायक भी नहीं है और कह देते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मुझे इस वाक्य को सुनकर एक बार मुझे हंसी आती है, वो घटना मुझे स्मरण आ रहा है। शायद आप लोगों में से कुछ लोग उनको जानते हैं, जानते होंगे, जानते भी हैं शायद। प्रेम कुटीर में एक सत्संगी आया करते थे, उनका नाम था दयाराम मेवा वाला, है ना, आप लोग बहुत जानते हैं उनको। तो उनका एक आदत था, एक स्वभाव था, एक आदत थी, शिवो हम शिवो हम शिवो हम, और जोर से जोर जोर से आवाज करते हुए चलते थे। तो मैं उस समय प्रेम कुटीर में कथा कर रहा था, तो ये मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, तो किसी प्रोग्राम के लिए मुझे प्रमुख अतिथि यानी चीफ गेस्ट बनाना चाहते थे होंगे इस्कॉन वाले, तो मेरे से वो प्रोग्राम लेने के समय लेने के लिए आए थे, ये प्रोग्राम है उसमें आप आइए, हम चाहते हैं कि आप प्रमुख अतिथि होकर हमारा ओपनिंग करें, कोई भक्ति संध्या या क्या थी समझ लो। वो कहने के लिए मेरे पास आए थे, दो थे इस्कॉन वाले, साधु थे, इस्कॉन के साधु थे। तो बैठे थे, चर्चा चल रही थी, तो इतनी में वह बाहर से दरवाजे से घुस गए। उसी तरह शिवोहम 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 करते हुए घुस गए। जैसे वो जोर जोर से शिवोहम करते हुए घुसे तो ये दोनों साधु हरे राम हरे राम हरे राम करने लग गए। भाई जोर जोर से हरे राम करने लग गए। तो हमने कहा ये भी कोई मजा हो रहा है भाई। उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रणाम किया, दयाराम जी ने, यानी उनकी बेटी रजनी है ना, आजकल नहीं दिखती है, दयाराम जी तो चले गए। तो दयाराम ने मेरे चरण पकड़कर प्रणाम किया। फिर उनकी एक आदत थी, जो भी उनके सामने आएगा उसको चरण ही छूकर प्रणाम करते थे। उनके सामने जो आ गया जिसको भी देखेंगे चरण छूकर प्रणाम करें, महिला हो पुरुष हो जो हो, सत्संगियों को चरण छूकर ही प्रणाम करते थे। अब साधारण सत्संगियों को तो चरण छूते थे तो वो तो इस्कॉन के साधु थे, वो उनके चरण छूकर शिवोहम शिवोहम करते हुए चरण छूने लग गए, तो चरण छूना नहीं दिया उन्होंने। बोले आप चरण छूने क्यों नहीं देते महाराज? दयाराम ने कहा, पूछा आप चरण छूने क्यों नहीं? अरे आप तो शिव हैं साक्षात, भगवान हमारी चरण छुए, अपने तो सीधे कह दिया कि शिवोहम, हमने आज तक तो शिव जी का नाम सुना था, आज ही साक्षात देख लिया आपको, शिवोहम आपने कहा, मैं शिव हूं, तो आपको कैसे चरण छूने दें हम महाराज। तो एक इनकी जो वाक्य था वो थोड़ा व्यंगोक्ति था, हम समझ गए उनके ये वाक्य पर, ये कोई शिव भाव से उन्होंने एक ऐसा व्यवहार किया हो, चरण छूना नहीं दिया हो, ऐसा नहीं है, व्यंगोक्ति था, आप खुद शिव हैं। तो हम समझ गए कि ये व्यंगोक्ति हो गई, ये इमोशन हो गया उनका अपने सांप्रदायिक। तो बेचारा दयाराम को उसको कोई ऐसा नहीं, तो उनके एक सहज स्वभाव बन गया था, परंतु उनके मन में ये बात आ गई। तो ये सबसे बड़े उन लोगों के सामने समस्या कि वेदांति अपने आप को ब्रह्म सिद्ध करते हैं, अपने आप को परमात्मा सिद्ध करते हैं, जबकि ये तीन काल में संभव नहीं है। ये कहता कौन है? ये द्वैतवादी लोग, द्वैतवादी लोग सभी लोग यही कहते हैं, जबकि वेदांती ये कहता है। तो ज्ञात्वा देवम, उस परमात्मा को जानकर, कैसे जानकर? ये फूल है इस तरह जानकर नहीं। अयम अहम अस्मि, जिस ब्रह्म की बात हम अभी तक करते रहे सुनते रहे, वो ब्रह्म मैं ही हूं, यही मैं हूं। इति, इस तरह यदि कोई जानता है, यदि कोई जानता है, चाहे आप जानो, चाहे वैष्णव जाने, चाहे जो भी जाने, यदि कोई इस तरह जानेगा तो वह सर्व पासापहानि, उसके सभी पास नष्ट हो जाएंगे। पास, पाप नष्ट होंगे नहीं, हाँ पास नष्ट होंगे। पास क्या है? बंधन, उसके सारे बंधन खत्म हो जाएंगे, बस फिर कोई बंधन नहीं रहेगा। पास रूपाणाम सर्वेशाम अविद्यादीनाम अपाहानि अवगतो, अपाहानि अवगतो, नष्ट होकर चले जाएंगे। पाप के बाप सर्वेशाम अविद्यादीनाम, अविद्या से लेकर उसके सभी कार्य, यही पास है, बंधन है, अविद्या ही बंधन है तो उसके कार्य भी बंधन है। सर्वेषाम अविद्यादीनाम अपहामी, अपहामी नष्ट हो जाते हैं। क्षण ही अविद्यादिवी ही क्लेशैः, क्लेश अविद्या है आदि में, ऐसे पांच क्लेश है ना, अविद्यादीनी क्लेश ही बहुवचन का प्रयोग, इसलिए क्लेश क्लेश अनेक है। उन अनेक क्लेशों में, अनेक में से पांच है, पांच क्लेशों में पहला क्लेश, क्लेश आदि का क्लेश कौन है, पहला क्लेश कौन है, अविद्या है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये तो वेदांती भी मान रहे हैं, और यही पंचक्लेश पतंजलियों ने माना है, पतंजलि ऋषि ने माना है। और ये पांच क्लेश वाला जीव है, पांच क्लेश जिसके पास नहीं है वो ईश्वर है, तो ईश्वर के पास पांच क्लेश नहीं है इसलिए वो बंधन में नहीं है। इस पतंजलि ऋषि का सिद्धांत है, योग दर्शन का सिद्धांत है, ये जीव में पांच क्लेश है इसलिए वो बंधन में है, ईश्वर में पांच क्लेश नहीं है इसलिए वो बंधन में नहीं है। क्योंकि वहां जीव और ईश्वर ये दो की चर्चा होती है, ब्रह्म की चर्चा नहीं होती। आप समझ गए कि नहीं, वहां ब्रह्म की चर्चा नहीं होती है। सांख्यों में ईश्वर की भी चर्चा नहीं होती है, तो ब्रह्म की चर्चा तो छोड़ दो, सांख्यों में केवल जीवात्मा की चर्चा होती है, पुरुष शब्द से जीवात्मा की चर्चा करते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं। आत्मा माने ब्रह्म शुद्ध आत्मा की नहीं, जीव की। पुरुष बहुत्तम सिद्धम, क्योंकि वे लोग पुरुष को आत्मा को अनेक सिद्ध करते हैं, तब तो वो सोपाधिक चेतन नहीं हो गया, तो वो लोग सोपाधिक चेतन तो जीव है। इसलिए सांख्य लोग तो जीव मात्र की चर्चा करते हैं, जीव के अतिरिक्त ईश्वर की भी चर्चा नहीं करते हैं, तो ब्रह्म की चर्चा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन सांख्यों से थोड़ा ऊपर उठकर योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, पातंजल वे लोग एक कोटि ऊपर उठते हैं और ईश्वर की चर्चा तक करते हैं। लेकिन वो ईश्वर कैसा होगा, बोले यही पुरुषों में से एक विशेष जो पुरुष होगा वो ईश्वर होगा। तो विशेष में हेतु क्या दिया, सामान्य पुरुषों में से जो विशेष होने में हेतु क्या दिया, क्लेश कर्म विपाका आशय इनसे युक्त सामान्य पुरुष, इनसे रहित अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। और जीव, इन क्लेशों से युक्त हुआ हुआ जीव, जब इन क्लेशों से रहित जो ईश्वर है उसकी जब अभिध्यान करता है, उपासना करता है, तस्य अभिध्यानात् वा ईश्वर प्रणिधानात् वा, ये दूसरा सूत्र है पतंजलि का, वो ईश्वर की प्रणिधान करता है तो वह भी इन क्लेशों से मुक्त हो सकता है। तो जीवों को क्लेशों से मुक्त करने वाला ईश्वर है, या दूसरा विकल्प वाह शब्द प्रयोग किया है तो विकल्प जीव खुद भी अपने क्लेशों को नष्ट कर सकता है, और जीव ईश्वर की कृपा से भी अपने क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो योग दर्शन में दो ऑप्शन है आपके, बंधनों से आपको मुक्त करने के लिए दो विकल्प हैं। एक, आप अपने बलबूते पर अपने बंधनों को नष्ट करो, और यदि आप अपने बलबूते पर असमर्थ हैं तो फिर ईश्वर के प्रणिधान के द्वारा, ईश्वर कृपा से तुम अपने बंधनों से तुम मुक्त हो जाओ। लेकिन वेदांत में हालांकि कह तो दिया है, इस प्रसंग में यह आ तो जाता है वेदांत में, तुम अपने बलबूते से ही अपने समस्या का समाधान करो, दूसरे पर भरोसा न करो। अब यदि अपने बलबूते पर समर्थ नहीं होगे तो फिर ईश्वर की आराधना करो तो वो कुछ मदद कर सकता है, कुछ मदद। कुछ मदद का मतलब है कि पूरा मदद नहीं करेगा, कुछ मदद करेगा। अब उस कुछ मदद के अंतर्गत क्या होगा, आपके जीवन में वो वैराग्य आदि भाव वो प्राप्त करा देगा और वैराग्य आदि भाव के द्वारा आपको एक विशेष बुद्धि की प्राप्ति करा देगा। वो गीता उसमें प्रमाण है, गीता में ये प्रमाण है, वह तुम्हें बुद्धि तक दे सकता है, इतना मदद करेगा, लेकिन उस बुद्धि के द्वारा मुक्त तो तुमको खुद ही होना चाहिए। तो ये तुम्हारे पास दो बुद्धि है साधन के रूप में, एक बुद्धि यह कि तुम खुद उस प्राकृत बुद्धि को परिष्कृत करके अप्राकृत बुद्धि में परिणत करके फिर उस बुद्धि के द्वारा तुम अपना उद्धार कर सकते हो। अब खुद ही अपने प्राकृत बुद्धि का परिष्कार नहीं कर सकते हो तो ईश्वर की कृपा से वह अप्राकृत बुद्धि की प्राप्ति होगी। ये बात ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयान्ति ते, उसी ऐसे भक्तों को मैं एक विशेष अप्राकृत बुद्धि प्रदान करता हूं और उस बुद्धि के द्वारा वो मुझे ही प्राप्त कर लेगा, यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। अब यहां दो प्रश्न आ गए भाई, गीता में जो ये वाक्य कहा गया है कि मेरे भक्त को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, ये बुद्धि योग प्रदान करने वाला जो होगा वह सोपाधिक होगा कि निरुपाधिक होगा? है? जो भगवान अपने भक्त को बुद्धि योग प्रदान करेगा, ददामि बुद्धि योगम मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, वो जो मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं कहने वाला जो भगवान होगा वो सोपाधिक होगा कि निरुपाधिक होगा? सोपाधिक होगा। अच्छा, अब उसके द्वारा दिया गया परमात्मा के, उसके द्वारा दिया गया बुद्धि के द्वारा, उसने आगे ये कह दिया कि उस बुद्धि के द्वारा वो मुझे प्राप्त करता है, तो फिर वो सोपाधि को प्राप्त करता है कि निरुपाधि को प्राप्त करता है? नहीं, वहां एक ही श्लोक में दो जगह मैं कहा, एक बुद्धि योग प्रदान करने वाले के रूप में भगवान ने अपना परिचय दिया, मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूं कहा, और दूसरा उस बुद्धि के प्रयोग करके वह मुझे प्राप्त करता है कहा। तो यहां दो में से बुद्धि योग प्रयोग करके उसको प्राप्त होने वाला वह परमात्मा सोपाधिक होगा कि निरुपाधिक होगा, और बुद्धि योग देने वाला परमात्मा सोपाधिक होगा कि निरुपाधिक होगा? वो तो सोपाधिक ही होगा, वो तो सोपाधिक ही है ना, बुद्धि योग देने वाला। प्रश्न इतना ही है, बुद्धि योग देने वाला जो परमात्मा है वेदांत के भाषा में सोपाधिक होगा कि निरुपाधिक होगा? ये प्रश्न का उत्तर चाहिए। हाँ, सोपाधिक होगा, ठीक। तुमने कहा बुद्धि नहीं है, वो पहली बात समझ के कह रहे हो, बुद्धि उसके पास न होने पर भी वो तुम्हें बुद्धि दे सकता है, उसकी क्षमता ये है। उसके पास बुद्धि नहीं है, माया है, लेकिन तुम यदि बुद्धि चाहते हो तो बुद्धि दे सकता है। हाँ, और तुम कहोगे उसके पास बुद्धि ही नहीं है तो बुद्धि कैसे दे सकता है? तो कोई भी किसी को अपनी बुद्धि देता नहीं है, देता है? आप अपने बुद्धि देते हो किसी को? वो तो अपने पास ही रहता है ना। तो उसके पास माया वृत्ति, माया है उपाधि, माया उपाधि से बुद्धि देता है, क्योंकि कारण माया है, कार्य बुद्धि है। कारण है तो जितने भी कार्य पैदा करो ना, उसके पास क्या आपत्ति है? माया से तुम हजारों बुद्धि पैदा करके दे देगा वो, अपनी बुद्धि देना तो जरूरी नहीं है ना। माया है, माया से बुद्धि पैदा होती है। तो बुद्धि योग देने वाला सोपाधिक है, ये निश्चित बात है। लेकिन उसके द्वारा दिए गए बुद्धि के द्वारा फिर जो उसको प्राप्त करने की बात आती है वो फिर बुद्धि योग से प्राप्त होने वाला वो निरुपाधिक होगा, सोपाधिक को प्राप्त नहीं करेगा। नहीं तो हम क्यों जाएंगे उसके पास कि वो बुद्धि सोपाधिक बुद्धि लेने के लिए, उस बुद्धि से भी वही सोपाधिक को प्राप्त कर, यहां उपाधि हटाना है, आदि व्याधि उपाधि सबको हटाना है, यहां है सारी उपाधि को हटाना है और उसी बुद्धि से वही उपाधि प्राप्त होना है, तो फिर क्यों लेने जाएंगे हम? वेदांती तो नहीं जाएगा, तुम लोग जाना हो जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। उसके द्वारा दिए गए बुद्धि से सोपाधिक, ईश्वर के द्वारा दिए गए बुद्धि से सोपाधिक को ही प्राप्त करना है, तो ऐसे बुद्धि लेने के लिए तो हम नहीं जाएंगे। यदि निरुपाधि की प्राप्ति होती है तो वो बुद्धि हमें स्वीकार्य है, सोपाधि की प्राप्ति के लिए हम नहीं जाएंगे। तो हम तो यही अर्थ करते हैं कि उसके द्वारा दिए गए बुद्धि से जो प्राप्त होने वाला है वह निरुपाधिक प्राप्त होगा। तो उसीलिए यही कहा नहीं, तो क्षीणई ही अविद्यादिवी ही, अविद्या है आदि में, ऐसे क्लेशे ही तत्कार्यभूत, उन क्लेशों का कार्य क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पांच क्लेशों का कार्य क्या है? जन्म मृत्यु ये उसके कार्य है ना। अब अविद्या और अविद्या के कार्य क्लेश, उसके कार्य जन्म मृत्यु, तब अविद्या ही नष्ट हो जाए, क्लेश ही नष्ट हो जाएगा, तब उसके जो कार्य हैं जन्म मृत्यु आदि वो भी स्वतः नष्ट हो जाएंगे। इसलिए क्या कहा? सर्वपाशा अपहानी, मूल श्रुति में आ गया ना, कैसे सर्वपाशा अपहानी, क्लेशर जन्म मृत्यु रूपी सर्वपाशा प्रहाणी छिणे ही छिणे ही रविद्यादि भी ही क्लेश ही तत्कार्यभूत जन्म मृत्यु तत्प्रहाणी जनन मरणादि दुख हेतु विनाश। प्रहाणी का अर्थ क्या किया? कार्यभूत तत्कार्यभूत जन्म मृत्यु प्रहाणी का अर्थ क्या किया? जनन मरणादि जरा व्याधि सभी ले लो, है ना, दुख का जो हेतु है वह विनाश। प्रहाणी, प्राणी का अर्थ क्या? विनाश।